ये DDS अलाटमेंट की दुकान थी, 1977 में अलाटमेंट हुई थी, पूरी डॉक्यूमेंट हमारे पास था, लेकिन कागज देखने का कोई राजी नहीं हुआ और डेमोलिशन करके चले गए।
मीडिया वाले, पुलिस वाले, ये जो हजारों की संख्या में जो जहांगीरपुरी में जो पुलिस आई, किस लिए? ये जो गवर्नमेंट की जो इतना पैसे बर्बाद हो रहा है, कुछ न कुछ तो फिल्म बनना चाहिए।
मुझे थोड़ा बहुत वक्त दिया जाता है कि मैं गाड़ियां वगैरह अपनी निकाल लेता या थोड़ा सामान साइड में कर लेता, मुझे बिल्कुल वक्त नहीं दिया गया और आए और सामान वामान उन्होंने तोड़फोड़ मचा दी।
कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं। ये मेरे पास जे सलम DDA की अलॉटेड है, ये NOC है मेरे पास। भाई जब गवर्नमेंट ये कहती है कि 2.5-3 फुट छज्जा अलाउड है हर दुकान के सामने, मेरा 1.5 फुट छज्जा था, आज अभी भी आप नाप सकते हो, 1.5 फुट छज्जे को भी तोड़ दिया गया।
जब तक सर्वे कंप्लीट ना हो जाए, ये रेडी पट्टी आजीविका संरक्षण कानून 2014 का Section 3 Subsection 3 कोई भी जाकर के पढ़ ले, पुलिस नहीं हटा सकती।
धार्मिक चश्मे से ये देखना बंद करें लोग, क्योंकि ये वही लोग हैं। आज कांग्रेस, अजय माकन जी भी जाते हैं, अरविंद केजरीवाल जी भी फटे पड़े हैं। इन लोगों ने इस दिल्ली को सीलिंग का दर्द दिया है।
नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ये सबका भारत है या एक तरफा भारत है, एक आइडिया है, बल्कि सपना आ गया कि जिस पार्टी के नेता जोर देकर बार बार कह रहे हैं कि बुलडोजर कानून के हिसाब से चल रहा है, उस पार्टी के सारे नेता, विधायक, पार्षद, कार्यकर्ता अपने अपने घरों की ऑडिट करा रहे हैं, ट्विटर पर फोटो डाल रहे हैं कि ये रहे वे, ये रहा उनका घर और ये रही उनके घर की ऑडिट, देख लीजिए उन्होंने अतिक्रमण किया है या नहीं, उसके हिसाब से बुलडोजर चला दीजिए। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा कभी नहीं होगा। जिस ट्विटर के बिक जाने की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, उस ट्विटर पर लिख देने भर से लोग गिरफ्तार हो जा रहे हैं। ट्विटर को बनाने वाले अपना सामान नहीं बचा पा रहे, ट्विटर पर लिखने वाले जेल जा रहे हैं। इस समय को विचित्र बताने वाले गलती कर रहे हैं। यही तो इस समय का सचित्र वर्णन है, जो साफ साफ दिखा रहा है, दिख रहा है, वही सचित्र है। वह विचित्र कैसे हो सकता है? यहां केवल विधायक जिग्नेश मेवाणी की गिरफ्तारी का संदर्भ नहीं है, बल्कि संदर्भ का दायरा बहुत बड़ा है। उसका संबंध एक सपने से भी है, जिसका जिक्र प्राइम टाइम के एक दर्शक ने किया है। दरअसल हकीकत से बचने के दो ही तरीके हैं, या तो गोदी मीडिया देखिए या फिर सपना। उस दर्शक ने बताया कि सपना दोपहर के वक्त देखा गया था। 3 पार्ट में देखे गए सपने का हम यहां जिक्र करना चाहते हैं। पहले हिस्से में प्राइम टाइम का दर्शक देखता है कि देश की हर अवैध दीवार पर लिखी हुई अवैध चेतावनी को सरकार ने वैध कर दिया है, लीगल कर दिया है। फिर से दोहरा देता हूं कि देश की हर अवैध दीवार पर लिखी हुई अवैध चेतावनी को सरकार ने वैध घोषित कर दिया है, लीगल कर दिया है। बुलडोजर मर्दाना कमजोरी दूर करने की नई दवा है। इसे सुनते ही दीवार की तरफ खड़े सारे मर्द यूरेका यूरेका चिल्लाते हैं और आर्कमिडीज की तरह शहर की ओर भागते हैं। न्यूज चैनलों पर फ्लैश होने लगता है, बुलडोजर मर्दाना कमजोरी दूर करने की नई दवा है। मिल गया बुलडोजर, मिल गया। देखते देखते सारा शहर लाउडस्पीकर से गूंजने लगता है। पत्रकार जल्दी जल्दी बुलडोजर पर चढ़ जाते हैं, अपनी ताकत का परचम लहराते हैं, खबरों में चिल्लाते हैं, बुलडोजर मर्दाना कमजोरी दूर करने की नई दवा है, अतिक्रमण पर आक्रमण हो गया है। सपने का Part 2 ये था कि घर घर में लोग बुलडोजर से खेलने लगते हैं, बैटरी वाले रिमोट से बुलडोजर दौड़ाने लगते हैं। आक्रमण आक्रमण का इतिहास पढ़ते पढ़ते कमजोरी फील करने वाले मर्दों को आक्रमण का बदला अतिक्रमण से लेने का अभ्यास कराया जाने लगता है। हाउसिंग सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में सब हाव हाव झाव झाव कर रहे हैं, मतलब लाइक और यस यस कर रहे हैं। इतिहास का बदला वर्तमान से और आक्रमण का बदला अतिक्रमण से। इस नारे के गूंजते ही कमजोरी से जूझ रहे मर्द प्रकट होते हैं। प्राइम टाइम के उस दर्शक ने ठीक ठीक सपने की हर बात को नोट किया है। बेलगाम बुलडोजर उनके घरों की दीवारों से टकराने लगता है। वहीं अवैध दीवार के पास लोटपोट हो जाता है, जैसे बंदर उलट उलट कर पीठ खुजलाता है, वैसे बुलडोजर उलट पलट कर अवैध से टकराने लगता है। इस नई समस्या को जान अवैध दीवार वाले फिर से व्हाट्सएप ग्रुप में मतदान करते हैं, ऐलान करते हैं कि बुलडोजर को पास की झुग्गी में चलने के लिए छोड़ दिया जाए। गरीबों के बिना किसी कानून का पालन नहीं होता, उनके घरों को गिरा दिया जाए, बुलडोजर को ही कानून बना दिया जाए। रुकिए, सपने का पार्ट 3 आ रहा है। यह दवाखाना शादी से घबराने वाले नौजवानों के लिए तंबू में चल रहा है। कितना सुंदर सजाया है इसे, 20 रुपए में तमाम कमजोरी दूर करने का यह दवाखाना उनके लिए चल रहा है जो अपनी कमजोरी पर खुलकर बात नहीं कर पाते, जिनके लिए कमजोरी गुप्त है और बहादुरी बुलडोजर। वक्त आ गया है कि सरकार ऐसे तंबुओं को अस्पताल माने और बुलडोजर को अदालत। प्राइम टाइम के दर्शक ने बताया कि सरकार वैद्य जी का सम्मान कर रही थी, तभी उसका सपना टूट गया, सपना समाप्त होता है। आपके लिए सपना समाप्त नहीं होता है। जिनके घरों में जरा भी अवैध निर्माण है वे बुलडोजर से ना खेले। जिनके घरों में जरा भी अवैध निर्माण है, बेहतर है समाज और सरकार की नजर से गुप्त रहें। अगर आपको इन 3 सपनों पर यकीन नहीं है तो न्यूयॉर्क टाइम्स के एक रिपोर्टर की बात यहां रखना चाहता हूं। वो लिखते हैं कि यह हो सकता है कि अणु बम की जगह बुलडोजर 20वीं सदी का सबसे विध्वंसक आविष्कार साबित हो। पत्रकार का नाम फिलिप शाबेकॉफ है, जो 1959 से 1991 के बीच न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए रिपोर्टिंग कर रहे थे। उनका कहना था कि बुलडोजर 20वीं सदी का अणु से भी ज्यादा भयंकर आविष्कार साबित हो सकता है। पर्यावरण के मामलों में लिखने वाले एक और लेखक एडवर्ड एबे ने लिखा है कि अमरीका में आतंक का सबसे आम चेहरा बुलडोजर और आरी। एडवर्ड सार्वजनिक भूमि की नीतियों को लेकर लिखा करते थे। गरीबों को बेदखल करने के लिए, जंगलों को काटने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल होने लगा था। भारत में जो लोग बुलडोजर को बाबा बता रहे हैं, यह जानकारी उनके लिए है कि अमेरिका के पत्रकार और लेखक इस बुलडोजर को आतंकवादी बताया करते थे। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा कि मलबा, कुर्सी और शेड हटाने के लिए नोटिस की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा तो स्टॉल, कुर्सी आदि हटाने के लिए बुलडोजर लाने पड़े। जहांगीरपुरी के दिलीप सक्सेना ने सौरभ शुक्ला से कहा कि उनकी दुकान तो एमसीडी ने ही आवंटित की है, तब फिर क्यों बुलडोजर चला दिया। आप इतना तो जानते हैं कि किसी गरीब के लिए सुप्रीम कोर्ट तक चले जाना, वो भी चंद मिनटों में, कितना आसान है इस देश में। सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका दायर करने वाले संगठनों के बारे में कहा कि ये संगठन ऐसे ही मामलों में कूद जाते हैं जबकि पीड़ित नहीं आता, क्योंकि उनको सबूत दिखाना होता है। इसी बात पर सौरभ ने दिलीप से बात की, जो सुप्रीम कोर्ट तो नहीं जा सके मगर सौरभ को सबूत दिखाते रहे।
56 साल के दिलीप सक्सेना की जूस की दुकान के आगे का हिस्सा और छज्जा बुधवार को गिरा दिया गया था। दिलीप का कहना है कि उनकी दुकान पूरी तरह से वैध है और उसके कागज भी उनके पास मौजूद हैं। वो हर साल दुकान के लिए टैक्स भी भरते हैं, जिसकी रसीद भी वो हमें दिखाने लगते हैं।
ये मेरे पास जे सलम DDA की अलॉटेड है, ये NOC है मेरे पास, कि ये मेरी पूरी दुकान ऑथराइज बनी हुई है। जे सलम ने MCD को लिखा है कि जो है ये दुकान पूरी ऑथराइज है, हमने नाप तोल करके इसमें सारा विवरण दिया गया है। मुआवजे की मांग क्यों नहीं करेंगे जब हमारा नुकसान हुआ है तो।
कितना नुकसान हुआ आपका?
नुकसान 7-8 से 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है मेरा।
8-10 लाख, तो 8-10 लाख रुपए का मुआवजा आप किससे मांगेंगे?
मैं कोर्ट में जाएंगे, MCD से मांगेंगे जब MCD ने तोड़ा है तो।
इन तस्वीरों में दिल्ली पुलिस के जवान कांग्रेस के नेताओं से धक्का मुक्की करते नजर आ रहे हैं। जिनकी संपत्तियों पर बुलडोजर चलाए गए, कांग्रेस के नेता उनसे मिलना चाहते थे लेकिन कानून व्यवस्था का हवाला देकर उन्हें इजाजत नहीं दी गई। नेताओं को तो छोड़िए, दिल्ली पुलिस जिनकी रेड़ी पटरी तोड़ी गई उनसे मीडिया को भी बात नहीं करने दे रही।
जहांगीरपुरी में ये वही जगह है जहां पर मंगलवार को अतिक्रमण हटाने के नाम पर नगर निगम के बुलडोजर चले थे। आज यहां एक तरह की सरहद का निर्माण हो गया है। इस सरहद के उस तरफ मीडिया को जाने से मना कर दिया गया है और मीडिया जो जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनसे भी बात नहीं कर सकता।
एमसीडी का तर्क है कि उन्हें रेड़ी पटरी सड़क से हटाने के लिए नोटिस की जरूरत नहीं है। वहीं पूर्व नगर विकास मंत्री अजय माकन रेड़ी पटरी पुनर्वास कानून का हवाला देते हुए दावा कर रहे हैं कि कल की एमसीडी की कार्रवाई गैर कानूनी है।
कोई भी कानून कोई पॉलिसी इजाजत नहीं देती है कि बगैर नोटिस दिए एक ईंट भी कहीं पे भी हटाई जा सके। साथ ही साथ में ये 2019 का मेरे पास में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर, ये हाई कोर्ट के डबल बेंच के ऑर्डर्स है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी जिसको अपहोल्ड किया है, अजय माकन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया।
सरकारी तरफ से ये कहा गया कि कुर्सी मलबा और शेड हटाने के लिए उन्हें किसी परमिशन की या नोटिस देने की जरूरत नहीं है।
मलबा किसको कहते हैं? जिसके अंदर जीवित आदमी रहते हैं क्या वो मलबा है? अगर आदमी हटा दें तो वो मलबा है, अगर आदमी रह रहा है उसके अंदर तो मकान है। हमारी समझ से तो मकान है क्योंकि उसके अंदर आदमी रह रहे हैं। और ये लोग जो जिन लोगों को आदमी की जानों का इंसानों की कीमत का कोई अंदाजा नहीं है उनके लिए ये मलबा है।
जहांगीरपुरी में भारी पुलिस बंदोबस्त ने यहाँ का जनजीवन अस्त व्यस्त कर रखा है। रास्ते बंद है, आवाजाही पर रोक है, लोग न यहाँ दुकानें खोल सकते हैं और न विरोध कर सकते हैं।
दंगे हो, फसाद हो या प्रशासन के बुलडोजर हो, नुकसान गरीबों का होता है। कल जिनके घरों पर जिनकी रेडियो पर बुलडोजर चले वो सब गरीब लोग थे, उनका किसी दंगे फसाद से कोई लेना देना नहीं है। दो हफ्ते यहाँ शांति रहेगी, लोग चाहते हैं यहाँ से पुलिस का बंदोबस्त कम हो तो उनकी दुकानें खुली, वो अपने काम पर जा सकें और उनका जनजीवन सामान्य रहे। सहयोगी मनोज ठाकुर, राजीव रंजन के साथ जहांगीरपुरी से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।
दुकान एमसीडी ने दी और एमसीडी ने उसे अतिक्रमण बताकर तोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जहांगीरपुरी में जनवरी से ही अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही चल रही है, 5 नोटिस दिए गए। कई लोगों ने कहा कि नोटिस तो मिला ही नहीं। दैनिक जागरण की आज की ये पहली हेडलाइन है, दिल्ली में भी उपद्रवियों के खिलाफ चला बुलडोजर, ये लिखा है। क्या जिनके घर ढहाए गए, दुकानें तोड़ी गईं, उन्हें किसी अदालत ने उपद्रवी कहा है? दोष साबित हो चुका है। आज कोर्ट ने सरकार ने इनमें से किसी को भी उपद्रवी नहीं कहा। क्या कहा है आप भी अपनी तरफ से चेक कर लीजिए, कुछ गलती हमसे भी हो सकती है। सरकार की तो यही दलील रही मूल रूप से कि जनवरी से नोटिस दिया गया था। अपने पिता के टूटे दुकानों से बचे खुचे सामान और सिक्कों को बिन रहे इस बच्चे ने रात क्या सपना देखा होगा? यह सवाल महत्वपूर्ण नहीं है, और ना यह भी कि जेसीबी के नीचे मेरा भारत महान का साइन बोर्ड कुचला गया। सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल और दुष्यंत दवे जैसे वकील जनता की तरफ से बोलते रहे। दवे ने कहा यह मुद्दा इस देश के सामाजिक ताने बाने को प्रभावित करता है, अगर इसे नहीं रोका गया तो ना कानून का राज रहेगा ना ही लोकतंत्र बचेगा। वृंदा करात के लिए वकील सुरेंद्र नाथ ने कहा कि वृंदा करात के माध्यम से बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखी है। वृंदा करात ने निगम को रोकने की भी कोशिश की, ये राजनीति नहीं है, तथ्य है, वकील ने कहा। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद भी वो नहीं रुके। जस्टिस राव ने पूछा कि अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश 11:15 पर हुआ तो कितने बजे एमसीडी को बताया गया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस पर गंभीर रुख दिखाएंगे। आज की सुनवाई में मध्य प्रदेश के खरगोन का भी जिक्र आया। जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से कपिल सिब्बल ने कहा कि अतिक्रमण की समस्या दिल्ली नहीं बल्कि पूरे देश की है, लेकिन यहां मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। जस्टिस राव ने कहा कि हमने सुना है कि हिंदुओं की प्रॉपर्टी भी तोड़ी गई है। तब सिब्बल ने मध्य प्रदेश के मंत्री के बयान का उदाहरण दिया। उनके अनुसार मंत्री ने कहा कि अगर मुस्लिम हमला करते हैं तो न्याय की चाह ना रखें। जो लोग उस समय इलाके में नहीं थे उनके घर भी तोड़ दिए गए। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एक समुदाय को टारगेट नहीं किया जा रहा है, जबकि तथ्य यह है कि मध्य प्रदेश के खरगोन में 88 हिंदू और 26 मुस्लिम थे। नोटिस 2021 में जारी कर दिया गया था। दो हफ्ते के बाद इस मामले में सुनवाई होगी, तब तक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने के लिए कहा है। डिमोलिशन हो जाने के अगले दिन आज कांग्रेस का डेलीगेशन जहांगीरपुरी जा रहा था। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा कि उन्हें नहीं जाने दिया गया। आम आदमी पार्टी की आलोचना हो रही थी कि पार्टी का कोई भी शीर्ष नेतृत्व जहांगीरपुरी नहीं गया। आज आम आदमी पार्टी के बुराड़ी से विधायक संजीव झा और आदर्श नगर से विधायक पवन कुमार शर्मा जहांगीरपुरी घटनास्थल पर पहुंचे। आज ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अहमदाबाद में थे, साबरमती आश्रम गए और वहां उन्होंने लिखा कि गांधी जी ने दुनिया को बेहतर बनाने के लिए सत्य और अहिंसा जैसे साधारण सिद्धांतों पर न जाने कैसे लोगों को जुटा लिया।
मैं इसको इस तरीके से देख रहा हूं कि ये बहुत ही गलत काम है कि पहले तो आप कब्जा करवाओ और फिर जो है उसको इस तरीके से एक्शन लो कि जैसे भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर पर युद्ध शुरू हो गया है। पहले पिछले 15 सालों से एमसीडी में भाजपा की सरकार है, अवैध कब्जे करवाते रहे और कल जो है जो तरीका इनका अवैध कब्जा हटाने का था, जो एक्शन का तरीका था, उसका मैं निंदा करता हूं, उसके मैं पक्ष में बिल्कुल नहीं हूं। अवैध कब्जा हटाया जाना चाहिए लेकिन तरीका गलत था, उसमें ना कोई जायज देखा ना कोई नाजायज देखा।
दिल्ली में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने लंबा संघर्ष किया है और अब मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संघर्ष पर उतरे हैं। अनुराग द्वारी की ये रिपोर्ट देखिए।
कुछ दिनों पहले विदिशा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका गांधी चौक से शहर की सड़कों पर निकली, हाथों में कटोरा था, लोगों से भीख मांग रही थी। पारा 41 के पार है लेकिन पहले आंदोलनरत पार्वती अहिरवार, उसके बाद सागर के तीन मड़िया में शहनाज बानो बेहोश होकर गिरी, अस्पताल में दम तोड़ दिया। साथी फिर भी डटे हैं, गुस्सा इतना कि जनाजे में पुलिस से भी भिड़ गए। सागर से तीन कैबिनेट मंत्री हैं, पुलिस को आंदोलनकारियों ने ज्ञापन दिया, कहा भाइयों को ढूंढ कर लाएं। वैसे एक मंत्री भाई आए, मुख्यमंत्री का गुणगान किया, वायदा किया और चले गए।
माननीय भूपेंद्र भैया जो हमारे सगे भाई हैं और कैबिनेट मंत्री है, एक तरफा उनकी चलती, हम उन्हीं की बहन लीला शर्मा बोल रहे हैं। दूसरा हमारा भाई गोपाल भार्गव इतिहास गवाए है, एक तरफा उनकी चलती, उनकी बहनें यहाँ पानी के लिए मोहताज है। तीसरा भाई हमारा गोविंद भाई जो सुर्खी विधानसभा के विधायक व मंत्री हैं, ऐसे तीन भाई और शिवराज चौहान मौसी के लड़का है, उन्हें हम बाद में ढूंढ लें, पहले हम सगे भाई को ढूंढ लें। जरा
हमारे मुख्यमंत्री जी काकुत महिलाओं के बारे में, बच्चों के बारे में बहुत ही संवेदनशील, और आप सभी लोगों ने देखा होगा कि पिछले वर्षों से जितनी ज्यादा लाभ की योजनाएं महिलाओं के लिए चलाएं, स्वरोजगार की योजनाएं, अन्य योजनाएं, प्रदेश पूरा इसका गवाह है। तो मैं मुख्यमंत्री से बात करके और सब का पक्ष रखूंगा।
रीवा में भी अपने साथियों के समर्थन में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का जत्था निकला।
जो हमारी बहनें हड़ताल के दौरान शहीद हुई हैं, जिनकी मौतें हुई हैं, उनके लिए हम यहाँ ज्ञापन देने आए हैं और हड़ताल श्रद्धांजलि देने आए। पूरे प्रदेश में हड़ताल चल रही है और ये जो मौत हुई है उसके जिम्मेदार मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि वो हड़ताल के दौरान ही जो हम लोग का आंदोलन चला उस दौरान शहीद हुई हैं, जिनके लिए हमें मांगे हैं कि उनको मुआवजा दिया जाए, उनके परिवार से एक को नौकरी दी जाए।
धार शहर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम कर दिया। वहीं धार के धर्मपुरी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शमीम खान की मौत के बाद उनके साथी रोते बिलखते उनके लिए न्याय की मांग कर रहे हैं।
दबाव आता था नौकरी के, आंगनवाड़ी सरकारी नौकरी थी, उसकी दबाव बहुत आता था उसके ऊपर, बहुत टेंशन करा उसने। और मेरी माँ बुजुर्ग है, वो किसके सहारे रहेगी, उसके बच्चे किसके सुपुर्द रहेंगे।
आपकी क्या बहन?
मेरी बहन सर कुछ भी करो,
क्या चाहते हो? क्या चाहते हो?
इंसाफ चाहते हैं और क्या चाहेंगे, इंसाफ चाहिए हमको।
प्रशासन मांग मानना तो दूर, इन कर्मचारियों को धमकी दे रहा है। डिंडोरी जिले में तीन कार्यकर्ताओं को निलंबित कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि प्रशासन ने उनके टेंट प्याऊ तक हटा दिए।
हमारे ऊपर जो गिने चुने कार्यकर्ताओं के ऊपर, जैसे हम लोग लीडर है, सचिव है, कोषाध्यक्ष है, उनको बर्खास्त करने का लेटर दिया गया है। कल रात में हमको हमारे व्हाट्सएप सुपरवाइजर के द्वारा किया गया है, मतलब भेजा गया है, और यहाँ से हमको आए दिन प्रताड़ित किया गया कि आप लोग वापस आ जाओ, नहीं तुम्हारा सेवा समाप्त करने की लेटर, धमकी भरी लेटर देना, और आज हमारा पंडाल भी उखड़वा दी।
इन कार्यकर्ताओं से बेरुखी तब हो रही है जब राज्य के कुल 97,139 आंगनवाड़ी केंद्रों में लगभग 84,90,000 बच्चे संपूर्ण बाल विकास कार्यक्रम में शामिल हैं, जिन्हें 1,85,000 लोगों का मैदानी अमला संभालता है। लेकिन हालात ये हैं कि 29,383 आंगनवाड़ी केंद्र किराए से चलते हैं, 20,247 केंद्र ऐसे हैं जहां शौचालय तक नहीं, 93,795 केंद्रों में शिशु गृह नहीं है, 46,554 केंद्रों में रसोई घर, 15,928 केंद्रों पर उपकरणों के भंडारण की व्यवस्था नहीं है, 75,700 केंद्रों पर बच्चों के बैठने की कुर्सियां तक उपलब्ध नहीं है, 64,148 केंद्रों में बिजली कनेक्शन नहीं है, जबकि 69,923 केंद्रों में पंखा और 66,394 केंद्रों में बल्ब भी उपलब्ध नहीं है। सरकार इन केंद्रों पर सालाना लगभग 62 करोड़ रुपए खर्च करती है। वैसे सरकार की प्राथमिकता में बच्चों का पोषण, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सुध लेना हो या नहीं, लोगों को तीर्थ दर्शन कराकर पुण्य कमाना जरूर है। कुछ दिनों पहले नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ इन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे थे। मैं थोड़ा हंसा क्योंकि वो कांग्रेस की सरकार थी जब इन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ा नहीं गया था। 100 रुपए की भारी भरकम धनराशि बाल दिवस के दिन प्रति आंगनवाड़ी केंद्र बच्चों पर खर्च करने के लिए दी गई थी। 20,000 से ज्यादा आंगनवाड़ी केंद्रों में ताला लगने की नौबत आ गई थी क्योंकि इनके पास किराए के पैसे नहीं थे। उस वक्त बीजेपी विपक्ष में थी, कांग्रेस सत्ता में, तब बीजेपी सवाल पूछ रही थी। अब बीजेपी सत्ता में है, कांग्रेस विपक्ष में, तो कांग्रेस सवाल पूछ रही है। यानी सत्ता बदल गई लेकिन बच्चों में पोषण का स्तर, आंगनवाड़ी केंद्रों की हालत और इन कर्मचारियों की दुर्दशा, इसमें कोई बदलाव नहीं आया, सब जस के तस ही हैं। मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।
आज 9वें गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पर्व है, जन्मदिन, 400वां प्रकाश पर्व देश भर में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। किसी दूसरे धर्म के हक के लिए, दूसरी आस्था के हक के लिए कुर्बानी देने वाले दुनिया के सबसे आदरणीय शहीद, उनकी शहादत यही संदेश देती है कि हक का सवाल सिर्फ अपना नहीं होता है, दूसरों का भी होता है। हक और वाजिब सवाल के लिए कुर्बानी दी जा सकती है। एक ऐसे समय में जब दुनिया के कई हिस्सों में और भारत में भी धर्म के आधार पर तरह तरह के जुल्म हो रहे हैं, लोगों को डराया जा रहा है, गुरु तेग बहादुर जी को याद करने की बहुत जरूरत है, उनके विचार, उनकी बहादुरी को समझने की जरूरत है। उनका बलिदान न किसी कौम के लिए है, न किसी कौम के खिलाफ है, बल्कि उस सिद्धांत के लिए है कि किसी का हक उसका हक है और जो सच होता है उसके लिए लड़ने से पीछे नहीं हटा जा सकता। बुलडोजर के नाम पर चहकने वालों से पूछा जा सकता है कि मजहब के नाम पर किसी का घर गिरा देना, किसी की दुकान गिरा देना और खुश होना और नाम जपना कानून का कहां तक जायज है, क्या यही बहादुरी है? आज के संदर्भ में गुरु तेग बहादुर जी की एक वाणी का जिक्र करना बहुत जरूरी है। भय काहू को देत नहें, नह भय मानत आन, मतलब किसी को डराना नहीं है और ना किसी से डरना है। जो लोग बुलडोजर के नाम पर किसी समुदाय के मन में जरा भी भय पैदा कर रहे हैं, उनके लिए भी संदेश है कि डराना छोड़ दें, और जो भयभीत हो रहे हैं उनके लिए भी संदेश है कि डरना छोड़ दें। जिस किसी को उनका यह विचार समझ आ जाएगा वो गरीबों के हक के लिए बुलडोजर के सामने आ जाएगा। निर्भय होना और वैर रहित होना ही हमारे गुरु साहिबों के सिद्धांत हैं। सिख पंथ ने इन्हीं सिद्धांतों का पालन करते हुए वो कर दिखाया जिसकी आज भी दूसरी मिसाल नहीं। कितनी सुंदर बात जो इस बात का मतलब समझ ले, दुनिया में मोहब्बत फैल जाएगा। भय काहू को देत नहें, न भय मानत आन। गुरु के सामने हाथ जोड़ते समय याद रखिएगा कि कहीं आप किसी को डराते तो नहीं या किसी से डरते तो नहीं। मत डरा कीजिए।